आज श्री राम नवमी है, राम का जन्म दिवस है, और इसलिए आज हम यहाँ सब एकत्र हुए हैं इस जन्म दिवस को मनाने के लिए। भगवान अपने आध्यात्मिक जगत, अपने दिव्य धाम में सदा निवास करते हैं। उनका धाम हमारे भौतिक जगत की तरह नहीं है, जो कि नश्वर है, जो दुखों से भरा हुआ है, जिसमें जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी है, जहां द्वेष है, काम है, लोभ है, मोह है, भ्रम है, दुख है। उनका धाम ऐसा नहीं है। उनका धाम आनंद से पूर्ण है, ज्ञान से पूर्ण है, दिव्य प्रेम से पूर्ण है, द्वेष रहित है, अनर्थों से मुक्त है। ऐसे शुद्ध आध्यात्मिक धाम में भगवान सदा निवास करते हैं। भगवान का धाम इस भौतिक जगत के परे है। हम जो भी ग्रह, तारे, नक्षत्र इत्यादि देखते हैं, ये सब इस भौतिक जगत के अंदर है, लेकिन इन सब का एक न एक दिन नाश होने वाला है। परंतु भगवान का धाम कभी भी नाश नहीं होता। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तम आहु परमां गतिम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये भौतिक जगत के व्यक्त अव्यक्त परिस्थिति के परे मेरा धाम है। यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। जब ये सब कुछ नष्ट हो जाता है तो मेरा दिव्य धाम कभी भी नष्ट नहीं होता है। यहां इस जगत में सभी कुछ नश्वर है, लेकिन भगवान के धाम में किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का क्षय नहीं होता है, क्योंकि वहां सब कुछ चिन्मय है, आध्यात्मिक है। सारे जो जीवात्मा है वो भगवान के धाम से इस भौतिक जगत में आए हैं। इस भौतिक जगत में आकर हम सब भगवान को भूल चुके हैं, लेकिन फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि अपने धाम से वो उतर के हमारे इस अंधकार और अज्ञान और दुख भरे जगत में प्रकट होकर हमें दिव्य ज्ञान देते हैं, हमें पुनः स्मृति देते हैं कि देखो, तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारा घर मेरे धाम में है। तो ये सब स्वतंत्र भावना में रहकर भोग करने की इच्छा छोड़ो, मेरे शरण में आओ, मेरा भक्त बनो, और इस तरह से तुम सुखी रह सकते हो। लेकिन हम भगवान के आदेश का पालन नहीं करते हैं, इसलिए बारंबार हमें यहां जन्म मृत्यु के चक्र में अटक कर रहना पड़ता है। भगवान के धाम में बहुत सारे ग्रह हैं, लोक, जैसे कि हमारे ब्रह्मांड के भीतर भी हम देखते हैं कितने सारे लोक हैं। अब रात को आकाश में देखिए, कितने आपको तारे, ग्रह दिखाई पड़ेंगे, अनंत कोटि। ठीक उसी तरह से भगवान के धाम में भी अनंत कोटि ऐसे ग्रह या लोक हैं, लेकिन ये सारे ग्रह या लोक पूरी तरह से आध्यात्मिक है। यहां के लोक या ग्रह जो होते हैं वो जड़ तत्वों से बने हुए होते हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, खम, लेकिन वहां के जो लोक हैं वो पूर्ण चिन्मय होने के नाते शुद्ध है, आध्यात्मिक है। और वहां भगवान के धाम में इस हरेक लोक के ऊपर, हरेक ग्रह के ऊपर भगवान का एक रूप वहां पर स्थित रहते हैं, और उस लोक की वो अधिष्ठाता देव रहते हैं। भगवान के अनंत रूप हैं भगवान के धाम में। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषं नव यौवनं च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हालांकि भगवान अद्वितीय हैं, उनसे परे कोई नहीं है, वो अच्युत हैं, कभी भी उनका पतन नहीं होता है, वो अनादि हैं, उनका कोई उद्गम नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अनंत रूप हैं, आदि हैं, वो सबके उद्गम खुद हैं, लेकिन उनका आदि कोई नहीं है। पुराण पुरुषम, सबसे पुराने सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं वो, और उनको अगर जानना है तो केवल भक्ति से जान सकते हैं, केवल वेदों का पाठ करने से, केवल थोड़े बहुत धार्मिक क्रियाएं करने से हम भगवान को जान नहीं सकते, हमें भक्ति करना चाहिए। तो ये सारे जो अनंत रूप हैं वो कौन है? वो केवल भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, उनके विस्तारित रूप हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आदि पुरुष गोविंद या श्री कृष्ण का मैं नमन करता हूं, जो कि अपने आप को अनंत रूपों में विस्तारित करते हैं भगवान के धाम में। रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन। भगवान कहते हैं राम आदि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन। बहुत सारे रूप हैं भगवान के, जैसे कि राम, नरसिंह, मत्स्य, वराह, कूर्म इत्यादि। इन अनंत कोटि रूपों में भगवान अपने आप को विस्तृत करते हैं, लेकिन मूल इन सारे रूपों के उद्गम श्री कृष्ण है, गोविंद। एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। जितने भी सारे अवतार भगवान के प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में, वो सब भगवान श्री कृष्ण के विस्तृत रूप हैं। भगवान ही अब कृष्ण ही अपने आप को विस्तार करते हैं और ये अलग 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 रूप धारण करते हैं, और फिर समय समय पर वो उस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, और जब वो यहां पर प्रकट होते हैं तो उनको अवतार कहते हैं। अवतार मतलब उतरना, जो उतरते हैं अपने धाम से। भगवान अनेक रूपों में यहां पर उतरते हैं। किस लिए उतरते हैं? गीता में भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं यहां पर प्रकट होता हूं। परंतु ये प्रश्न उठता है कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो उनको दुष्टों का नाश करने के लिए यहां पर प्रकट होने की क्या आवश्यकता है? क्या वो अपने धाम में बैठकर उनका विनाश नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं, परंतु उनका यहां अवतार लेने का मुख्य कारण केवल दुष्टों का विनाश करना ये नहीं है। उनका प्रकट होने का मुख्य कारण है कि वो यहां इस भौतिक जगत में जिसमें अंधकार है उसमें प्रकाश लाना चाहते हैं। किस तरह का प्रकाश? अपने दिव्य लीलाओं को यहां पर प्रकाशित करना चाहते हैं। जिन दिव्य लीलाओं को देखकर, जिनके बारे में सुनकर, स्मरण करके यहां के बद्ध जीव उनके प्रति आकर्षित हो सके, जिन दिव्य लीलाओं को करके वो अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर सके, तो अपने भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए मुख्यतः भगवान यहां पर अवतार लेते हैं। पर यहां पे अलग अलग अपनी सुंदर लीलाएं करके वापस अपने धाम में चले जाते हैं। थोड़े समय के लिए आते हैं, लीला करते हैं, वापस लौट के जाते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मनेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म को दिव्य है ऐसे जानता है तत्वतः, तो उसे यह पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, वरन वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से जब हम जान लेंगे कि भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं और होंगे वो सब भगवान के दिव्य रूप है, उनका जन्म उनके कर्म सब दिव्य हैं, हमारे जैसे जन्म और कर्म उनके नहीं है, जो ऐसे भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक जान लेता है वो इस संसार के चक्र से मुक्त होने के लिए योग्य बन जाता है। और समय समय पर ये अलग 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 अवतार, ये अलग अलग रूप हैं, वो यहां पर आया करते हैं इस भौतिक जगत में। जिस तरह से समझ लीजिए एक कारखाना है या एक बहुत बड़े औद्योग के संभालने वाले परिवार है, इनमें कई भाई हैं और इनके कई कारखाने हैं, तो हर एक कारखाने में शायद एक दिन एक भाई जाए, फिर अगले दिन दूसरा भाई जाए, इस तरह से भाइयों के बीच में उन्होंने जिम्मेदारी बांट ली है कि हर एक कारखाने में हम में से हर एक व्यक्ति एक हफ्ते में एक दिन जाएगा। तो उसी तरह से भगवान के अनंत रूप जो है वो समय समय पर यहां पर हर एक ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं, अपनी सुंदर लीलाएं प्रकट करते हैं, अपने भक्तों को आनंद देते हैं, फिर चले जाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है अब कि भगवान के इतने रूप क्यों हैं? केवल भगवान ने अगर अपना एक ही रूप श्री कृष्ण का रखा होता जो कि उनका मूल रूप है तो कोई लोगों के मन में भ्रांति नहीं होती, बहुत सरल हो जाता सबके लिए। अब इतने सारे रूप हैं, इतने सारे भ्रम भ्रांति सब जगह फैले हुए हैं, तो भगवान ने अपने आप को इतने सारे रूपों में विस्तारित क्यों किया है, इसके लिए भी कारण है। सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान भी एक व्यक्ति है, जैसे आप हैं और हम हैं। जो व्यक्ति होते हैं उनकी भावनाएं होती हैं, वो भी प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम स्वीकार करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रेम का अभिलाषी नहीं है तो वो व्यक्ति नहीं है, वो पत्थर है। तो भगवान भी एक व्यक्ति है लेकिन वो परम पुरुष है, वो हमारे जैसे साधारण सीमित व्यक्ति नहीं है। उनके बारे में सब कुछ असीमित है, अचिंत्य है, हमारी कल्पना के बाहर है, लेकिन फिर भी वो एक व्यक्ति है, फिर भी वो प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो किन से प्रेम का आदान प्रदान करेंगे? वो अपने भक्तों से, उनके भक्त उनसे प्रेम करते हैं और भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, और इस तरह से दोनों को बड़ा आनंद आता है इस दिव्य प्रेम के आदान प्रदान में। तो भगवान अलग अलग भावों में प्रेम करना चाहते हैं और अलग अलग भावों में प्रेम स्वीकार करना चाहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इस जगत में भी अलग अलग रिश्तों में, अलग अलग संबंधों में अलग अलग तरह के प्रेम पाए जाते हैं। जैसे दो मित्रों के बीच में प्रेम है वो एक तरह का प्रेम है, एक व्यक्ति को एक अमुक तरह का रस या स्वाद उस प्रेम में मिलता है, लेकिन इस मित्रों के साथ में जो संबंध का प्रेम है उसमें वो आनंद नहीं मिलेगा उसे जो अपने माता पिता के संग जो प्रेम है उसमें मिलेगा। माता पिता और बच्चे के बीच में जो प्रेम है वो भी प्रेम है लेकिन अलग है। मित्रों के बीच में जो प्रेम है वो एक तरह का प्रेम है, माता पिता और बच्चों के बीच में जो प्रेम है वो दूसरे तरह का प्रेम है। फिर पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है, उसका रस तीसरा ही है, अलग ही है। तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि ये संसार में जितने भी अलग अलग तरह के प्रेम उपलब्ध हैं, उन सब का स्वाद वो ले ले, सही है ना? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहता है कि मुझे केवल एक मित्र चाहिए और उसके साथ मैं प्रेम का आदान प्रदान करूंगा, संसार का अन्य प्रेम मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कहता है कोई। हर एक व्यक्ति को तरह तरह के प्रेम चाहिए, वो अलग अलग तरह के भाव व्यक्त करना चाहता है प्रेम के संबंध में। तो ठीक उसी तरह से भगवान भी अलग अलग भावों में वो प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं। कभी अपने भक्तों के साथ के सामने एक छोटा बच्चा बनना चाहते हैं ताकि उनका लाड़ प्यार स्वीकार करें। कभी कभी वो अपने भक्तों के साथ प्रेमी और प्रेमिका का स्वाद प्रेम का स्वीकार आदान प्रदान करना चाहते हैं। कभी अपने भक्तों के साथ मित्र के जैसा रहना चाहते हैं, जैसे उन्होंने अर्जुन के साथ में बर्ताव किया था। तो भगवान ये सब करना चाहते हैं, लेकिन भगवान में और हम में अंतर ये है कि जितने भी सारे भावों में भगवान प्रेम करना चाहते हैं वो एक ही समय भगवान कर सकते हैं, केवल अपने आप को विस्तृत करके। बस एक ही साथ में अलग अलग रसों का स्वाद लेते हैं भगवान, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर एक व्यक्ति अपने मित्रों के साथ बैठा है तो फिर अपने पत्नी के साथ नहीं बैठ सकता, अपने पत्नी के साथ है तो फिर माता पिता के साथ नहीं रह सकता। इस तरह से एक समय पर एक तरह का प्रेम हम ले सकते हैं संसार में, लेकिन भगवान कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। वो एक ही समय पर सब तरह के प्रेम का स्वाद ले सकते हैं। कैसे? अपने आप को विस्तारित करके। अपने एक भगवान अनेक हो जाते हैं और अलग अलग भक्तों के संग अलग अलग प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। जादू भगवान का। हम देखते हैं संसार में एक पिता अपने छोटे बच्चे से बहुत प्रेम करता है, और कभी कभी जब लड़के के साथ वो खेलता है, उसके साथ कुश्ती करता है, और कुश्ती करता है फिर बच्चा उनके ऊपर चढ़ जाता है, फिर वो हार जाता है, और जैसे एक छोटा बच्चा करता है वैसे भी पिताजी करने लगता है। पिताजी है उम्र से बड़ा, बहुत बड़ा है, लेकिन छोटे बच्चे की तरह वो नाटक कर रहा है। वो भी चाहता है कि मैं भी बच्चे की तरह बन जाऊं, लेकिन क्या पिताजी का शरीर एकदम छोटा बच्चे की तरह बन जाएगा? उसका शरीर वैसे है वैसे ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। वो उस भाव का आनंद लेना चाहता है लेकिन पूरी तरह से नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसका शरीर एक बड़े आदमी का शरीर है। हालांकि अपने बच्चे के साथ ऐसा खेलना चाहता है वो, लेकिन उसके लिए शरीर एक सीमा बन जाती है। लेकिन भगवान के साथ ऐसी सीमा नहीं है। जब भगवान चाहते हैं कि मैं बच्चे का आनंद स्वीकार करूं, क्या हो जाता है? तुरंत भगवान बच्चे बन जाते हैं, बाल गोपाल। तो भगवान बच्चे का आनंद आराम से स्वीकार करते हैं, खुद बच्चा बनकर। जब भी चाहे भगवान ऐसे अलग अलग रूप धारण करके इन अलग अलग रूपों का आनंद ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब भगवान बच्चा बन जाते हैं तो फिर अपना मूल रूप खो बैठते हैं। नहीं, अपने धाम में वैसे के वैसे रहते हैं बांसुरी बजाते हुए, लेकिन अपने आप को विस्तार करके बच्चे के रूप में आते हैं वृंदावन में या अयोध्या में, और बाल लीला करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो ये एक कारण है कि भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं, अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तार करते हैं। दूसरा कारण ये है कि उनके भक्तों के भी अलग अलग भाव होते हैं उनकी पूजा करने के लिए। सभी जो लोग होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं, बराबर है? किसी को मौसम्बी रस चाहिए, किसी को संतरे का रस पसंद है, किसी को आमरस पसंद है। अभी अलग अलग स्वाद सबके होते हैं, अलग अलग इच्छाएं सबकी होती हैं, क्योंकि हम सब अलग अलग व्यक्ति हैं। तो अलग अलग व्यक्ति होने के नाते भगवान के प्रति हमारा प्रेम का जो संबंध होता है वो अलग अलग हो सकता है। कोई व्यक्ति भगवान को एक रूप में देखना चाहता है, कोई किसी और रूप में देखना चाहता है। हनुमान जी एक जगह घोषणा करते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरे आराध्य सीताराम उनमें और लक्ष्मी नारायण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मैं तो केवल मेरे भगवान को सीताराम के रूप में ही देखना चाहता हूं। लक्ष्मी नारायण को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरा जो प्रेम है वो केवल सीताराम के प्रति है, क्योंकि ये रूप जो है मुझे बहुत आकर्षित करता है। तो इस तरह से भक्तों के भी अलग अलग भाव होते हैं, भक्त भी अलग अलग रूपों में भगवान को पूजना चाहते हैं। इसलिए भगवान जो कि भक्त वत्सल है, भक्तों के प्रति स्नेह भावना रखते हैं, वो भी अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार अलग अलग रूप धारण करते हैं उनका प्रेम स्वीकार करने के लिए। तो हनुमान जी जैसे भक्तों के लिए वो सीताराम के रूप में आते हैं, वृंदावन के निवासियों के लिए वो श्याम सुंदर गोविंद अपने आधे रूप में चले आते हैं, प्रहलाद के लिए नरसिंह के रूप में आते हैं, अपने अलग 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 भक्तों के लिए अलग अलग रूपों में वो अपने आप को प्रकट करते हैं। ये दूसरा कारण है कि भगवान अपने आप को इतना विस्तारित क्यों करते हैं। तीसरा कारण ये है कि जब भगवान यहां पर प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में, अलग अलग परिस्थितियों की वजह से यहां पर प्रकट होते हैं। कभी कोई तकलीफ होती है, कोई कष्ट होता है, और उनके अवतार लेने का जो कारण है वो अलग अलग हो सकता है परिस्थिति के हिसाब से, इसलिए उनको अलग अलग शरीर धारण करने पड़ते हैं। जैसे कि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि उनकी मृत्यु किसी पशु के हाथ, किसी मनुष्य के हाथ, किसी राक्षस गंधर्व के हाथ वगैरह नहीं होनी चाहिए, अस्त्रों के साथ साथ नहीं, शस्त्रों के साथ नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, जमीन में नहीं, आसमान में नहीं, पानी में नहीं। कितने सारे ऐसे वरदान मांगे। उन्होंने सोचा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं और इस तरह से मैं अमर बन जाऊंगा, क्योंकि भगवान ने कहा था, ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं तुम्हें अमर होने की का वरदान नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूं। तो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझकर हिरण्यकश्यप ने यह वरदान मांग लिया था, लेकिन भगवान उनसे ज्यादा बुद्धिमान है, तो उन्होंने एक ऐसा रूप धारण किया जो कि न पशु का था न मनुष्य का था। और जब उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया, न अंदर न बाहर, न आसमान में न जमीन पर न पानी में, इस तरह से ब्रह्मा जी को वरदान को बनाए रखते हुए उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तो उस समय के लिए, उस परिस्थिति के लिए भगवान को केवल वही रूप धारण करना पड़ा, इसलिए भगवान ने नरसिंह देव का रूप स्वीकार किया। ठीक उसी तरह से जब प्रलय हो गया, सारे पृथ्वी में जल भर गया, सब जगह केवल पानी ही पानी था, तो राजा सत्यव्रत जो कि उनके शुद्ध भक्त थे और अन्य कई ऋषि मुनि, इन सब को बचाने के लिए भगवान श्री हरि ने एक मत्स्य, एक मछली का रूप धारण किया और फिर एक नौके को, जिसमें कि ये सब उनके भक्त बैठे थे, प्रलय जल में घुमाते फिराते रहे और उनकी उनकी रक्षा कर दी। तो प्रलय के समय जो अवतार होना था वो तो मछली का ही होना था, तो इसलिए भगवान ने मछली का अवतार धारण किया। उसी तरह से समुद्र मंथन के समय जब मंदर पर्वत को धारण करना था तो भगवान ने एक कूर्म का रूप धारण कर लिया, उस मंदर को अपने पीठ पर धारण कर लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से भी भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं। ठीक उसी तरह से अयोध्या में त्रेता युग में वही भगवान श्री हरि श्री राम के रूप में प्रकट हुए। तो नरसिंह देव का रूप अमुक था उस तरह, उस समय के लिए, तो राम का रूप उन्होंने ऐसे क्यों लिया, ऐसे मनुष्य रूप भगवान ने क्यों धारण किया, इसके पीछे भी एक कारण है। जैसे हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे तपस्या करने के बाद, ठीक उसी तरह से रावण ने भी बहुत तपस्या की थी, शिव जी को प्रसन्न किया था, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, और फिर उन्होंने वरदान मांगा था कि मैं अमर रहना चाहता हूं, लेकिन जैसे हिरण्यकश्यप के साथ हुआ, शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने कहा हम खुद अमर नहीं है तो तुम्हें हम कैसे अमर बना सकते हैं। तो फिर रावण ने कहा ठीक है, मैं ये वरदान चाहता हूं कि कोई राक्षस, कोई गंधर्व, कोई देवता, कोई नाग मुझे नहीं मार सके, कोई अस्त्र शस्त्रों से कोई मुझे नहीं मार सके, ऐसे वरदान मांगा। लेकिन रावण ने एक गलती की, आपको पता है वो क्या गलती की वरदान मांगने में, मनुष्य के हाथों में मृत्यु प्राप्त करने की बात, इससे रक्षा की इच्छा नहीं की, क्योंकि रावण सोच रहे थे मैं तो राक्षस योनि का हूं और ये मनुष्य तो तुच्छ जीव है, ये मेरा क्या नुकसान कर सकेंगे, ये तो कितने कमजोर हैं, ऐसे तो लाखों लाखों मनुष्यों को मैं तो खा सकता हूं, खा जा सकता हूं, मुझे मनुष्यों से कोई डर नहीं है, इतना घमंड हो गया था रावण को। तो रावण ने यह पूछने के लिए भी सोचा नहीं कि चलो मनुष्यों के प्रति मुझे सुरक्षा दीजिए, नहीं, सबके बारे में पूछा। ब्रह्मांड में जितने भी ऊपर लोक में प्राणी हैं उन सब से सुरक्षा की याचना की, लेकिन मनुष्यों के प्रति नहीं की। तो जब रावण ने बहुत सारा अत्याचार किया था इस ब्रह्मांड में, तो सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए थे, त्राही त्राही हमें बचाइए। ब्रह्मा जी भी देवताओं को लेकर क्षीर सागर में गए। विष्णु के को स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, पुरुष सूक्त प्रार्थना की। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय से संदेश भेजा कि डरो नहीं, मैं बहुत ही जल्दी प्रकट होने वाला हूं और रावण नाम के राक्षस का वध मैं शीघ्र ही कर दूंगा। लेकिन ब्रह्मा जी, आप सब देवताओं को कह दो कि वो भी अलग अलग योनि में, खास करके वानरों के योनि में जन्म ले लें और मेरी सहायता करें रावण का वध करने के लिए। इस तरह से भगवान मनुष्य रूप में, मनुष्य समाज में प्रकट हुए, अयोध्या में प्रकट हुए। तो ये उनके राम रूप धारण करने का उद्देश्य है। रूप धारण किया तो बहुत सुंदर रूप से प्रकट हुए, जैसे मनुष्य समाज में होता है। जन्म जब मां के गर्भ से होता है तो बच्चा छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे से बड़ा होने लगता है और उसकी लीलाएं, उसके कार्यकलाप जो बचपन में बहुत मधुर होते हैं, सभी लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। ठीक उसी तरह से भगवान श्री राम ने भी ऐसे ही सुंदर सुंदर लीलाएं करना आरंभ किया, सबके मन को बड़ा प्रभावित किया, बहुत ही जल्दी बड़े हो गए। तो राम यहां आए थे देवताओं के कार्य को संपन्न करने के लिए। वैसे ये देवतागण कौन है? ये देवतागण है भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि, इस ब्रह्मांड के व्यवस्थापन को संभालते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं। इसके जो अलग अलग विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, उनको वो संभालते हैं। कोई वायु का विभाग देखता है, कोई उष्णता का, कोई प्रकाश का, कोई जल का, और जो भी भगवान ने बनाया हुआ कायदा है, कायदा कानून है, उसका देखभाल करते हैं। जैसे यहां देश में पुलिस होती है, सरकार के अफसर होते हैं जो यहां का कायदा कानून संभालते हैं, ठीक उसी तरह से ये देवतागण भगवान कृष्ण के भक्त हैं जो ये अलग अलग चीजें संभालते हैं भगवान की ओर से। लेकिन असुरी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, कभी कभी आकर इस सारे व्यवस्था में इसका संतुलन बिगाड़ देते हैं, कुछ न कुछ ऐसे गलत कार्य करके, पाप करके, उत्पात करके सब डिस्टर्ब कर देते हैं, विचलित कर देते हैं, हल्ला मचा देते हैं सारे ब्रह्मांड में, कायदा कानून में। जो भी पद्धति भगवान ने बनाई है उसको हिला डालते हैं। तो जब ऐसे हो जाता है तो देवतागण बहुत विचलित हो जाते हैं। जैसे समझ लीजिए देश में कोई व्यक्ति आतंकवाद करना शुरू करे तो फिर सारे पुलिस भी हिल जाती है, सारे सरकार भी हिल जाती है, बहुत विचलित हो जाते हैं, उत्पात हो जाता है देश में। तो ठीक उसी तरह से जब असुरी प्रवृत्ति के लोग ब्रह्मांड में बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं तो देवतागण विचलित हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे इन असुरों का वध करना चाहिए। कभी कभी असुरों का वध कर देते हैं, लेकिन कभी कभी असुर इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि वो देवताओं को ही हरा देते हैं। रावण इतना शक्तिशाली बन गया था कि सारे ब्रह्मांड को प्राय उसने जीत लिया था। देवतागण भी रावण से घबराते थे और उसने एक योजना बनाई थी कि मैं एक ऐसे स्वर्ण की सीढ़ी बनाऊंगा जिसको चढ़ के सीधा कोई भी साधारण से साधारण आदमी पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्ग लोक पर चढ़ के जा सकता है, जबकि ये इस ब्रह्मांड के कानून के खिलाफ है। स्वर्गलोक ये भी इस ब्रह्मांड के भीतर एक लोक है। जो लोग पुण्य करते हैं वो स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं, जो पाप करते हैं वो नरक में जाते हैं। नरक में जाने के बाद अपने पापों को भुगतने के बाद जब उनके पाप क्षीण हो जाते हैं वो पुनः पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो लोग स्वर्ग लोक में जाते हैं जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर से वो भी पृथ्वी लोक पर चले आते हैं। इस तरह से यह गोल गोल घूमने का चक्कर रह जाता है और जीव बद्ध अवस्था में इस संसार के भीतर घूमते रहता है, अलग अलग योनियों में, कभी पृथ्वी लोक के ऊपर, कभी स्वर्ग लोक में, कभी नरक लोक में, ऐसे घूमते फिरते रहता है। तो पुण्य जाने के लिए भगवान की का जो कानून है वो ये है कि हमें पुण्य करने चाहिए और उस पुण्य के बल पर, आधार पर व्यक्ति, जीव स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सकता है। लेकिन रावण ने कहा, अरे इस कानून को कौन परवाह करता है, भगवान का कानून छोड़ दो, मैं अपना कानून बनाता हूं। आज से अगर किसी को भी स्वर्ग जाना हो तो यह सीढ़ी से जा पाएगा, स्वर्ण की सीढ़ी। इस तरह से रावण हमेशा उत्पात मचाता था सारे ब्रह्मांड में। ऐसे असुरी प्रवृत्ति के लोग जो रहते हैं उनके हाथों में थोड़ी शक्ति रहती है भौतिक विज्ञान के बल स्वरूप, और फिर उस भौतिक विज्ञान के बल पर उनके पास ऐसे अस्त्र शस्त्र तंत्र रहते हैं जिससे कि वे प्रकृति के कानून को तोड़ना चाहते हैं, और इतना घमंड हो जाता है उनको उनके शक्ति से जो कि विज्ञान से आया हुआ है कि फिर वो भगवान का अस्तित्व ही नकारने लगते हैं और भगवान को ही मारने का प्रयास करते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप और रावण ने किया था। तो ऐसे अवस्था में देवताओं को और कोई चारा नहीं रहता बल्कि भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं। तो भगवान जब आए थे देवताओं का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए यहां पर आए थे। रावण वास्तव में सारे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के नाक में दम बन गया था। क्यों? क्योंकि इतना अत्याचार और अन्याय करता था सभी लोगों के प्रति कि सभी लोग बड़े हैरान हो गए थे। जन्म से रावण का नाम रावण नहीं था। कोई जानता है जन्म से उनका नाम क्या था? रावण का नाम दशग्रीव। ग्रीव मतलब सर, दशग्रीव मतलब दस सर वाला। अब जानते हैं ना कि रावण के दस सर थे। उनके पिता का नाम था विश्रवा, जो कि एक ऋषि थे, ब्राह्मण थे, लेकिन किसी वजह से ये ऐसा पुत्र जन्म हुआ गलत समय पर जिसके दस सर हुए थे। तो दशग्रीव बहुत ही जल्दी शक्तिशाली हो गया, अद्भुत शक्ति उसे आ गई उसके तपस्या के बल पर, बहुत भौतिक विज्ञान और कलाएं सिद्धियां प्राप्त कर ली दशग्रीव ने, और इतना सताने लगा ब्रह्मांड के सभी लोगों को, देवलोक में भी, पृथ्वी लोक में भी, नीचे के लोकों में भी। वो स्त्रियों के ऊपर बलात्कार करने लगा, लोगों को की हत्या करने लगा। कितने सारे स्त्रियों ने उनको शाप दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु और तुम्हारा नाश स्त्री की वजह से होगा, क्योंकि तुमने कितने स्त्रियों के प्रति बलात्कार किया है, अपमान किया है उनका। तो ऐसे क्योंकि ये दशग्रीव सभी को रुलाता था, रोने पे मजबूर करता था, इसलिए उसका नाम बन गया रावण, जो सबको रुलाता है। तो इतना अत्याचारी बन गया था रावण। तो भगवान विष्णु तक खबर पहुंच गई कि ये इतना बड़ा शक्तिशाली असुर हो गया है, राक्षस, जो सबको रुला रहा है, मेरे व्यवस्था को, मेरे कायदे कानून को बिल्कुल तुच्छ समझकर तोड़ रहा है, तो इसका वध करना मेरे लिए उचित होगा। इसलिए भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हुए इस भौतिक जगत में। और उनका उद्देश्य प्रकट होने का कारण और भी एक था कि वो मनुष्य जाति में ये दिखाना चाहते थे कि आदर्श मनुष्य क्या है, आदर्श मनुष्य को कैसे होना चाहिए। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। हमेशा मर्यादा के से सीमित रहते थे। आदर्श पुत्र कैसा होता है उन्होंने दिखाया। जो भी उनके बुजुर्ग होते थे उनकी बात हमेशा मानते थे, आज्ञाकारी थे, बड़े आदर सम्मान से उनके सामने पेश आते थे, उनके पिता दशरथ महाराज जो भी उनको कहते तुरंत पालन करते, बिल्कुल हिचकिचाते नहीं। आज सुबह राम कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि जब कैकई ने दो वरदान मांगे दशरथ महाराज से, और उसमें दूसरा वरदान था कि श्री राम को 14 साल के लिए दंडकारण्य में वनवास में जाना चाहिए, दशरथ महाराज को बहुत दुख हुआ। दशरथ महाराज कहने लगे कि मेरा जो मासूम पुत्र है, निष्पाप है, वो इतना आज्ञाकारी है कि जब मैं उसे कहूंगा कि हे राम तुम 14 साल के लिए वनवास में चले जाओ और आज ही चले जाओ, वो तुरंत जैसे आपकी आज्ञा पिताजी कह के निकल जाएगा, खुशी से चले जाएगा, एक शब्द भी विरोध में कहेगा नहीं। हालांकि मैं बहुत खुश होऊंगा अगर इस बार वो मेरा विरोध करे तो, और कहे कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा अधिकार है राज सिंहासन पर बैठने के लिए, अगर ये ऐसा उत्तर मुझे दे मेरा पुत्र आज मैं बहुत खुश होऊंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि वो मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेगा, हां में हां मिलाकर वनवास में चले जाएगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि श्री राम ने दिखाया कि आदर्श पुत्र कैसे होना चाहिए, किस तरह से अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यहां तक कि श्री राम ने कैकेयी देवी को बताया, हालांकि वो उनकी विमाता थी, अपनी माता वास्तव में नहीं थे, विमाता थी, तो उन्होंने कहने लगे कि हे कैकेयी माता, अगर दशरथ महाराज की बात तो दूर है, केवल अगर आप मुझे आदेश देते कि राज सिंहासन भरत को दे दो और तुम दंडकारण्य में चले जाओ तो मैं खुशी से चले जाऊंगा। ऐसी जरूरत नहीं है कि केवल मुझे पिताजी को मेरे को ऐसे बोलना चाहिए, आपके कहने से भी मैं तुरंत चले जाऊंगा। तो इतना आदर रखते थे अपने माताओं के प्रति, अपने पिता के प्रति। फिर एक आदर्श पति भी थे। जब सीता देवी का अपहरण हुआ तो कितना कष्ट उन्होंने उठाया सीता देवी को फिर से लाने के लिए, युद्ध किया, इधर उधर बहुत तपस्या किया, कष्ट उठाया, और फिर सीता देवी का संरक्षण किया, और जंगल में भी हर तरह से सीता को सुविधा देने के लिए प्रयत्न किया, सीता देवी को सही धार्मिक पद्धति से, जैसे एक पति को पत्नी के प्रति पेश आना चाहिए वैसे पेश आए। तो आदर्श पति, एक पत्नी व्रत धारण किया श्री राम ने, जो कि मनुष्य समाज में अच्छा है। जब वो दंडकारण्य में गए थे वनवास में, तो वहां पर कई ऋषि मुनि थे, श्री राम के सुंदर रूप को देखकर बहुत आकर्षित हुए थे। तो उस समय श्री राम ने कहा कि ये जो प्रेम का रस है, इसका आदान प्रदान मैं इस अवतार में नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है, लेकिन अगली बार जब मैं वृंदावन में प्रकट हो जाऊंगा कृष्ण के रूप में, तब मैं आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर पाऊंगा। इसलिए यही जो दंडकारण्य के ऋषि थे, वो द्वापर युग के अंत में गोपियां बनी वृंदावन की, और फिर माधुर्य रस में, श्रृंगार रस में भगवान के प्रति प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम का स्वाद लेने के लिए योग्य बन गए। लेकिन उस अवतार में जबकि वो श्री राम के रूप में आए, उन्होंने कहा नहीं, एक पत्नी व्रत। जब शूर्पणखा भी आई तो प्रभु राम ने क्या कहा कि मैंने तो व्रत लिया है कि मैं एक ही पत्नी को स्वीकार करने वाला हूं, तो तुम लक्ष्मण के पास जाओ, क्योंकि लक्ष्मण अभी तक उन्होंने विवाह नहीं किया, जाओ उनके पास। लक्ष्मण ने कहा मैं तो केवल श्री राम का दास हूं, अगर तुम मेरी पत्नी बन जाओगे तुम्हें दासी होना होगा, तो तुम तो इतने सुंदर हो वगैरह, और तुम दासी कैसे बन सकती हो, तो तुम श्री राम के पास ही जाओ। तो श्री राम के पास वापस आए तो श्री राम ने भी इनकार कर दिया। उस समय शूर्पणखा को गुस्सा आया और सीता के प्रति आक्रमण किया। उस समय श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण इतना मजाक नहीं करना चाहिए, ये खतरा हो सकता है। फिर लक्ष्मण ने अपना तलवार उठाया और शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। फिर शूर्पणखा वहां से भाग के चली गई। तो एक आदर्श पति कैसे होना चाहिए, ये भी श्री रामचंद्र ने दिखाया। साथ साथ एक आदर्श क्षत्रिय और राजा कैसे होना चाहिए, और अपनी प्रजा का संरक्षण कैसे करना चाहिए वो भी श्री राम ने दिखाया। वैदिक शास्त्रों में बताया जाता है कि राजा वो नारदेव है, भगवान का मनुष्य रूप में प्रतिनिधि, इसलिए उसे प्रजा का ऐसे देखभाल करना चाहिए जैसे एक पिता अपने बच्चों का देखभाल करता है। और श्री राम ने ठीक इसी तरह से अपने प्रजा की रक्षा की, उनसे प्रेम किया और राम राज में सारी प्रजा इतने संतुष्ट थी, इतनी खुश थी, सभी लोग राजा श्री राम से इतना प्रेम करते थे और श्री राम भी उनसे इतना प्रेम करते थे कि आजकल हमारे लिए ये बड़े आश्चर्य की बात हो जाती है कि नेताओं में और प्रजा में ऐसा भी प्रेम हो सकता है कभी। और अपनी प्रजा के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, आदर्श राजा भी थे, आदर्श गृहस्थ कैसे होना चाहिए ये भी श्री राम ने अपने जीवन से दिखाया। सारे धर्मों का के नियमों का पालन करते थे, जल्दी जल्दी सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे, यज्ञ किया करते थे जो उस समय युग धर्म हुआ करता था, फिर ब्राह्मणों को दान देते थे, हमेशा धार्मिक कार्यों में रहते थे, सीता देवी को साथ में जो कि उनकी अर्धांगिनी थी उनको साथ में रहकर बहुत सारी धार्मिक क्रियाएं करती थी, तपस्या करते थे। इस तरह से जैसे गृहस्थ को रहना चाहिए वो भी उन्होंने सिखाया। आजकल लोगों की धारणा ये है कि भोग करना ही जीवन की सफलता है और जीवन का उद्देश्य है, और ये भी लोग सोचते हैं कि एक बार हमने विवाह कर लिया तो ये केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए एक लाइसेंस है, एक अनुमति है। लेकिन ऐसा नहीं है, विवाह में प्रवेश करना ये बहुत गंभीर बात है। विवाह में प्रवेश करने का मतलब है कि पति और पत्नी दोनों मिलकर भगवान विष्णु या कृष्ण की सेवा में तत्पर रहे, उनका जीवन विष्णु की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए, ये विवाह का असली मतलब होता है। तो प्रभु रामचंद्र और सीता देवी दोनों साथ में मिलकर भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे, उनकी सेवा किया करते थे। ऐसे आदर्श गृहस्थ कैसे होना चाहिए वो भी उन्होंने अपने जीवन से दिखाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्योंकि भगवान श्री राम मनुष्य समाज में प्रकट हुए थे इसलिए मनुष्य की तरह अपने आप को पेश किया उन्होंने, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो एक साधारण मनुष्य है, वो तो स्वयं भगवान ही है और हम उनकी अद्भुत लीलाओं को देखकर ये जान सकते हैं। अलग अलग समय पर उन्होंने अपने मनुष्य समाज में लीला करते करते ऐसे अद्भुत लीलाएं किए जिनमें उन्होंने अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसे हम जान सकते हैं कि ये कोई एक साधारण व्यक्ति या मनुष्य नहीं थे बल्कि स्वयं भगवान थे। जब वनवास में चलते चलते दंडकारण्य में आए और वहां पर सीता देवी का अपहरण हो गया और सीता देवी को ढूंढते ढूंढते वो किष्किंधा स्थान में आए, तो वहां पे सुग्रीव हनुमान इनसे दोस्ती हो गई। किष्किंधा मतलब आजकल जो कर्नाटक में होसपेट और हम्पी का जगह है बेल्लारी के पास, वो किष्किंधा स्थान है। तो उस स्थान तक पहुंच गए थे पंपा सरोवर के पास श्री रामचंद्र, और उनको पता चला कि सुग्रीव भी अपने बड़े भाई वाली के डर से यहां किष्किंधा में छुपा हुआ है। तो सुग्रीव भी दुखी था क्योंकि उसका राज्य उसे छीन लिया गया था, और श्री राम भी दुखी थे क्योंकि उनकी पत्नी का रानी का अपहरण हो गया था। तो फिर उनको पहले से ही साधुओं ने उपदेश दिया था कि आप सुग्रीव से एक मित्रता का संबंध स्थापित कर लो और फिर सुग्रीव की वानर सेना आपको मदद करेगी रावण की हत्या करने के लिए, रावण की सेना को परास्त करने के लिए। तो जब श्री राम ने सुग्रीव की कहानी सुनी और राम ने अपनी कहानी सुग्रीव को सुनाई, तो श्री राम ने कहा कि हे सुग्रीव तुम चिंता नहीं करो, मैं वाली को उस राजगद्दी से हटाकर तुम्हें वहां बिठाने के लिए पूरी मदद कर दूंगा। तो सुग्रीव बड़े खुश हुए, लेकिन सुग्रीव के मन में एक संशय था और संशय ये था कि वाली तो बहुत शक्तिशाली है, और अगर ये शक्तिशाली वाली के सामने श्री राम आए तो मैं कैसे ये गारंटी दे सकता हूं कि श्री राम इनको हरा सकते हैं, क्या वास्तव में वो इतने शक्तिशाली है। तो उस समय लक्ष्मण और राम के सामने सुग्रीव ने कहा कि वाली इतना शक्तिशाली है कि एक बार उसने ये जो 7 ताल वृक्ष हैं, उनमें से उन्होंने 7 तीर लगाकर इनके बीच में से तीर निकाल दिए थे। तो अगर श्री राम ऐसा कर सकेंगे, एक भी वृक्ष में से अगर तीर लगा के छोड़ सकते हैं, तो मैं मानूंगा कि वो शक्तिशाली है वाली से ज्यादा। और इतना ही नहीं, दुंदुभि नाम का एक राक्षस था, बहुत साल पहले वो यहां पर आया था। सबसे पहले वह समुद्र के पास गया था, समुद्र को उसने चेतावनी दी कि आओ मेरे साथ युद्ध करो, लेकिन समुद्र ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता, तुम चले जाओ और कहीं। वो बड़ा गुस्सा आया, कहने लगे कौन है मेरा सामना करने वाला इस सारे पृथ्वी के ऊपर। तो हिमवान ने कहा कि हां किष्किंधा में जाओ, वहां पर वाली नाम का वानर है, वो तुम्हारे बराबर का होगा। तो फिर ये दुंदुभि राक्षस वहां पे नीचे आया किष्किंधा में, और वाली को ललकारा युद्ध में। वाली को बड़ा गुस्सा आया, सुग्रीव और वाली के रानियों ने उनको बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन वाली ने एक नहीं मानी उनकी बात, सीधे बाहर आए और मुक्का प्रहार करना आरंभ किया। धुआंधार युद्ध दोनों के बीच में हुआ, दुंदुभि बहुत शक्तिशाली था लेकिन वाली उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थे। आखिर दुंदुभि को पकड़ के वाली ने घुमाया जोर से और 4 मील दूर उठा के पटक दिया और मार दिया। इस तरह से दुंदुभि की हत्या हो गई। लेकिन दुर्भाग्य से वाली के लिए हुआ ये कि जब वो शरीर हवा में उड़ रहा था तो उस समय उस राक्षस के मुंह से खून निकल रहा था, और उड़ते उड़ते ये उस रास्ते में जगह जगह खून गिर गया, और गिरते गिरते वहां पे रास्ते में जो एक आश्रम था वहां पे गिरा खून, जिस आश्रम में मतंग ऋषि नाम के एक संत रहा करते थे। वो अपने धार्मिक क्रियाओं में मग्न थे, अचानक उन्होंने देखा कि अरे ये एक शरीर को जा रहा है राक्षस, ऊपर यहां खून गिर रहा है, मेरे सारे यज्ञ के कार्य इत्यादि सब दूषित हो गए, मेरे पवित्र आश्रम में ऐसे राक्षस का खून, वो कौन मूर्ख व्यक्ति है जिसने ऐसे किया है। तो अपने दिव्य दृष्टि से वो जान गए कि ये वाली का काम है, तो उन्होंने वाली को श्राप दिया कि अगर वाली आज के बाद यहां किष्किंधा में कदम भी रखेगा तो वो मर जाएगा, और अगर वाली के मंत्र भी यहां पर प्रवेश करें तो वो एक प्रतिमा बन जाएंगे हजारों सालों के लिए, बस वहीं पर पेड़ की तरह खड़े हो जाएंगे। वाली ने आकर मतंग ऋषि को बहुत मनाने का प्रयत्न किया, लेकिन मतंग ऋषि ने माना नहीं, इसलिए वाली उस समय के बाद में उस नगर में आया ही नहीं, उस स्थान में किष्किंधा में ऋषिमुख पर्वत पर। और जब वाली और सुग्रीव का झगड़ा हो गया और वाली ने सुग्रीव को राज्य से भगा दिया, तो सुग्रीव ने इस ऋषिमुख पर्वत के ऊपर ही जहां मतंग ऋषि का आश्रम था वहां पर आश्रय लिया, क्योंकि सुग्रीव को मालूम था कि यहां पर वाली नहीं आ सकता है उस शाप की वजह से। तो वाली इतना शक्तिशाली है यह सुग्रीव जानता था, इसलिए सुग्रीव ने श्री राम से कहा अगर आप ये 2 चीजें कर सकते हैं तो मैं आपको मानूंगा कि आप वाली से ज्यादा शक्तिशाली हैं और आप मुझे वाली को परास्त करने के लिए मदद कर सकते हैं। पहली बात, इन 7 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष में तो कम से कम एक तीर ऐसे छोड़िए कि एक साइड से अंदर जाए दूसरे से बाहर निकल आए, और दूसरी बात, इस दुंदुभि राक्षस को आप 200 धनुष के जो अंतर तक आप फेंक दीजिए। तो सबसे पहले उन्होंने दुंदुभि राक्षस का जो शव वहां पड़ा था, वहां उनकी हड्डियां वगैरह पड़ी थी, विशाल शरीर था उस दुंदुभि का, तो उसको अपने दाहिने पांव के अंगूठे से केवल थोड़ा उचका दिया, उछाल कर वो 80 मील दूर चला गया। बस आराम से हल्के से उसको पटका दिया। तो सुग्रीव को लगा कि बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी हे राम, जब वाली ने शरीर को उठाकर फेंका था तो उस समय यह दुंदुभि का शरीर रक्त और मांस से भरा हुआ था, इसलिए ज्यादा भारी था। अभी तो यह केवल हड्डी है, इसे बहुत ज्यादा हल्का हो गया है। तो आपने इतनी दूर इसको फेंका, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वाली से ज्यादा आपकी शक्ति है, मैं ये कैसे कह सकता हूं? तो फिर राम ने कहा ठीक है, तो अपना एक तीर निकाला और फिर वो जो ताल वृक्ष थे सात, एक के बाद एक के बाद एक, पहले में उन्होंने तीर लगाया बड़े जोर से, और न केवल पहले वृक्ष के अंदर से जाकर बाहर निकला, दूसरे के अंदर भी गया, वहां से भी बाहर निकला, तीसरे के अंदर भी, इस तरह से वही एक तीर सातों वृक्षों से अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करके निकली और फिर जमीन के अंदर जाकर सारे पृथ्वी लोक से नीचे होकर ब्रह्मांड के नीचे पाताल लोक से जाकर ऊपर आई और फिर से प्रभु रामचंद्र जी के पीठ के पीछे कक्षा में आके बैठ गई। जब सुग्रीव ने यह देखा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। इस तीर की सारी यात्रा के लिए एक घंटा लग गया, मतलब उन्होंने तीर छोड़ा, तीर छोड़ने के बाद सातों वृक्षों में फटक से गए एक क्षण में, लेकिन बाद में सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करना था ना तीर को, तो इतने तेज गति से छोड़ा था, इतनी शक्ति से श्री राम ने उस तीर को छोड़ा था कि एक घंटे में सारे नीचे ब्रह्मांड का पाताल लोक तक भ्रमण करके फिर से श्री राम के पास आ गया। फिर सुग्रीव ने हाथ जोड़कर मान लिया, हाँ अब मैं मानता हूं कि आप वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं कि आप वाली को हरा सकते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं श्री कृष्ण के और एक सुंदर रूप हैं, जो कि भगवत प्रेम बांटने के लिए आए थे 500 वर्ष पूर्व, संन्यास लेने के बाद जब वो दक्षिण भारत में गए थे तो इसी स्थान में आए थे ऋषिमुख पर्वत के पास तीर्थ यात्रा के दौरान, और उन्होंने ये सात ताल वृक्ष देखे जो कि वही ताल वृक्ष थे जिनके भीतर से श्री रामचंद्र ने तीर छोड़े थे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने इन सातों वृक्षों को आलिंगन किया एक के बाद एक, और फिर उनके साथ में जो उनके सेवक थे काल कृष्णदास, उन्होंने देखा आश्चर्यचकित होकर कि ये सातों वृक्ष गायब हो गए और वो वैकुंठ वापस चले गए, क्योंकि उन्होंने श्री राम की सेवा की थी और चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया। आलिंगन करने के बाद एक के बाद एक वो अदृश्य होकर दिव्य रूप में वैकुंठ चली गई। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हीं सात वृक्षों का उद्धार भी कर दिया। और ऐसे कई बार श्री रामचंद्र ने अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाया कि वो स्वयं भगवान है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जब राजा विश्वमित्र उनको मिथिला नगरी में लेकर आए जहां की एक धनुर्यज्ञ होने वाला था, और वहां पर राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता देवी के लिए एक स्वयंवर रखा था, लेकिन उसमें एक शर्त थी कि वहां एक बहुत विशाल धनुष था और वो इतना भारी था कि 5000 बड़े बड़े हृष्ट पुष्ट सैनिक उसको एक बड़े विशाल रथ के ऊपर सवार कर खींच रहे थे उनको दरबार में लाने के लिए। 5000 लोगों की शक्ति चाहिए थी उसको खींचने के लिए, केवल उठाने की बात तो दूर है। और ये जो धनुष, इसका इतिहास इस तरह से था। जनक महाराज ने सुनाया कि सबसे पहले ये धनुष शिवजी का था। जब दक्ष प्रजापति ने शिवजी का अपमान किया था यज्ञ के समय और सती ने अपना प्राण त्याग दिया था अपने योग बल से, तो शिवजी ने अपना धनुष उठाया था सब कुछ विध्वंस करने के लिए। लेकिन उस समय सारे देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि अगर सृष्टि के संहार का समय अभी तक नहीं आया, अगर आप इसी समय आपका धनुष उठाएंगे तो फिर क्या होगा सारे ब्रह्मांड का, तो कृपया आप ऐसा मत कीजिए। फिर उस समय शिवजी ने सोचा कि ठीक है, अब मैं नहीं करूंगा कुछ। थोड़ी देर बाद हुआ ये कि देवतागण ये देखना चाहते थे कि विष्णु और शिवजी में श्रेष्ठ कौन है,
और कोई ऐसे तरकीब निकालकर उन्होंने दोनों के बीच में युद्ध रचा दिया। और भगवान विष्णु ने अपने धनुष से शिव जी के धनुष की जो रस्सी है उसको काट दिया। और फिर विष्णु ने हुंकार किया जोर से, और इतने जोर से हुंकार किया कि शिव जी की इंद्रियां स्तब्ध रह गई और कुछ बोल नहीं पाए, देख नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए। तब सारे देवता समझ गए कि विष्णु ही श्रेष्ठ है। तो शिव जी बड़े निराश हुए और उन्होंने अपने धनुष को ये प्रदान कर दिया एक राजा को, जो कि निमी राजा के वंश में आने वाला थे, जिनका नाम था देवरात। और देवरात ने अपने पुत्र को दिया, और इस तरह से उस वंश में चलते चलते वो जनक महाराज के पास आकर पहुंच गया था। तो जनक महाराज कहने लगे कि ये धनुष को जो रस्सी से बांध सकता है केवल वही व्यक्ति होगा योग्य, जो कि मेरी पुत्री के साथ विवाह कर पाएगा। तो बहुत सारे लोग आए थे, राजा महाराजा राजकुमार जगह जगह से, पृथ्वी के कोने कोने से आए थे, यहां तक कि देवलोक से भी आए थे लोग, क्योंकि सीता देवी का सौंदर्य के बारे में सभी ने सुना था। लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं पाया, उठाने की बात दूर है, क्योंकि अगर रस्सी बांधनी है तो सबसे पहले उठाने की आवश्यकता है। लेकिन जब ये सारे अलग अलग राजकुमार इत्यादि आए थे और वो असफल हुए, उनको बड़ा अपमान लगा। सब एकत्र होकर राजा जनक की ओर उन्होंने आक्रमण किया अपनी सेना लेकर। राजा जनक ने युद्ध किया, लेकिन देखा कि मेरी सेना अकेली है और इन सब की सेना मेरे विरुद्ध है। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना किया, देवताओं ने अपनी सेना भेजी, और फिर इस सेना को देखकर ये अन्य जो राजकुमार और राजाएं थे वो डर के मारे भाग गए। इस तरह से जनक महाराज का राज्य बच गया। तो जब श्री राम वहां पर आए तो विश्वामित्र मुनि ने कहा राजा जनक से कि ये श्री राम है, राजा दशरथ के पुत्र, तो वो यहां पर सीता देवी के हाथ के लिए इस धनुष को उठाना चाहते हैं। तो जनक महाराज ने श्री राम को देखा कि कितने सुंदर हैं, कितने वीर लगते हैं, लेकिन फिर भी जनक महाराज के मन में संशय था। उन्होंने कहा कि आज तक बहुत लोगों ने चेष्टा की है इस धनुष उठाने के लिए, यहां तक कि देवलोक के निवासी भी आकर उठाने की सोच रहे थे, लेकिन वो भी नहीं कर पाए, तो एक साधारण मनुष्य क्या कर पाएगा। लेकिन फिर भी हम श्री राम को स्वागत करते हैं। राजा जनक के मन में यह भी तो चिंता थी ना कि अगर कोई उठा नहीं पाएगा तो पुत्री के साथ विवाह कौन करेगा, पुत्री तो कुंवारी रह जाएगी। तो राजा जनक ने सोचा कि ये राम तो बहुत योग्य है मेरी पुत्री के लिए, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि वो उठा पाए, लेकिन मुझे संशय है। तो श्री राम वहां पर गए, उस धनुष को देखा, विशाल धनुष, इतना बड़ा, इतना वजनदार। बड़े आसानी से श्री राम ने अपना बाया हाथ उसके ऊपर रखा और एक झटके में आसानी से उस धनुष को उठा दिया। उठाकर उसकी रस्सी जो थी उसको खींचा, बांध दिया, और इतना ही नहीं, ऐसे जोर से खींचा कि धनुष जो है बीच में से टूट गया। जैसे एक लकड़ी को ऐसे मोड़कर हम तोड़ सकते हैं, वैसे श्री राम ने उस धनुष को तोड़ दिया। वो धनुष जिसको उठाने के लिए देवता लोग भी समर्थ नहीं थे, वो श्री राम ने आसानी से उठाकर एक छोटी सी लकड़ी की तरह तोड़ दिया। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं कि जैसे एक हाथी एक गन्ने के खेत में जाकर गन्ने को उठाकर तोड़ता है, हाथी का बच्चा, वैसे उसी तरह से श्री राम ने आसानी से धनुष उठाया और उसको तोड़ दिया। बाल गजलीला, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, गज मतलब हाथी, बाल गजलीला, जैसे हाथी का बच्चा ऐसे गन्ने को तोड़ता है। इतना भयंकर आवाज आया उस समय, मानो कि सारा ब्रह्मांड का विस्फोट हो रहा है, और जितने भी सारे लोग थे सब जमीन पर गिर गए, सिवाय विश्वामित्र मुनि, श्री राम, जनक महाराज और लक्ष्मण। केवल ये चार अपने पैरों पर खड़े रहे, बाकी सब जमीन पर गिर गए। और फिर सब जगह वाहवाकार हुआ, देवलोक से भी पुष्पों की वर्षा होने लगी, जय श्री आराम, जय श्री आराम, ऐसे जयघोष होने लगा। और उसके बाद में फिर सीता देवी और श्री राम का विवाह हुआ। साथ साथ जो सीता देवी की बहनें थीं, उनका भी विवाह हुआ। जनक महाराज के दो पुत्रियां थी, एक तो सीता देवी और दूसरी थी उर्मिला। तो सीता देवी का विवाह हुआ श्री राम से, उर्मिला का विवाह हुआ लक्ष्मण से। जनक महाराज जिनका नाम था शिरध्वज, उनके भाई थे जिनका नाम था कुशध्वज। कुशध्वज की दो पुत्री थी, कन्याएं थी, जिनका नाम था मंडवी और श्रुतकीर्ति। मंडवी का विवाह हुआ भरत से और श्रुतकीर्ति का विवाह हुआ शत्रुघ्न से। तो चार भाइयों ने चार बहनों से विवाह किया और इस तरह से सारे अयोध्या और मिथिला नगरी में खुशियां मनाई गईं। तो भगवान श्री राम ने अपना दिव्य स्तर सिद्ध करके दिखाया, और केवल विष्णु का धनुष नहीं, शिवजी का धनुष नहीं, विष्णु का धनुष भी उन्होंने तोड़कर दिखाया। जब विवाह करने के बाद दशरथ महाराज, वशिष्ठ मुनि अपने पुत्रों को वापस मिथिला से अयोध्या लेकर जा रहे थे, तो अचानक एक अंधकार वहां आ गया, बादल छा गए और सब जगह बिजली चमकने लगी, बादलों की गरजने की आवाज आने लगी, सब जगह अशुभ लक्षण प्रकट होने लगे। सभी लोग घबरा गए कि क्या हो गया, और अचानक सामने से प्रकट हुए परशुराम जी। बड़े भयानक लग रहे थे, ऐसा उनका मुख लग रहा था कि जैसे संहार के समय नाश करने के लिए जैसे कोई रूप धारण करता है वैसे। दशरथ महाराज बड़े चिंतित हुए उनको देखकर, अपने पुत्रों की चिंता लगी हुई थी। हालांकि श्री राम इतने शक्तिशाली थे, लेकिन दशरथ महाराज तो थे पिता, तो पिता माता जो होते हैं बच्चों की हमेशा चिंता करते हैं। तो परशुराम वहां आए, उनके हाथ में एक धनुष था, और उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि तुमने हे राम शिवजी का धनुष तोड़ा है। शिवजी का धनुष तो काफी बड़ा है, शिवजी को त्रिपुरासुर नाम के असुर का वध करने के लिए प्रदान किया गया था। ये धनुष जो है विश्वकर्म ने बनाया था, लेकिन धीरे धीरे होते होते वो देवरात के पास आया और फिर जनक महाराज के पास। लेकिन अगर तुम वास्तव में शक्तिशाली हो तो मेरे पास में जो विष्णु का धनुष है उसको बांध के मुझे दिखाओ, फिर मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरे साथ युद्ध करने के लिए योग्य हो। दशरथ महाराज इस बात को सुनकर बहुत घबरा गए, हाथ जोड़कर कहने लगे, हे परशुराम, आपने तो व्रत लिया था कि आपने जब 21 बार इस पृथ्वी के सारे क्षत्रियों का नाश कर दिया है तो फिर से आप अभी अस्त्र नहीं उठाएंगे, तो क्यों आप ऐसे आक्रमणात्मक भावना लेकर यहां हमारे सामने आए हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। परशुराम ने उनकी ओर देखा भी नहीं, जवाब देने की बात दूर है, देखा भी नहीं, सीधे श्री राम की ओर देखने लगे कि बोलो राम, तैयार है, कर सकते हो। तो श्री राम ने देखा, तुरंत अपना बाएं हाथ उठाया और उनके हाथों से विष्णु का धनुष छीन लिया। आश्चर्यचकित हो गए परशुराम, उन्होंने सोचा था कि मेरे अलावा ब्रह्मांड में कोई उसको उठा भी नहीं सकता, और ये 16 वर्षीय श्री राम ने आसानी से धनुष को छीन दिया और छीन कर फिर उसको आसानी से बांध दिया, और फिर उसको तीर ऐसे छोड़ने के लिए तैयार हो गए, अपने कानों तक तीर खींच लिया, और इस समय परशुराम की सारी शक्ति क्षीण हो गई, निरुत्तर रह गए, कुछ नहीं बोल पाए। फिर श्री राम ने कहा कि आप तो ऋषि हैं, आप मेरे गुरु विश्वामित्र से के संबंधी हैं, इसलिए आपके ऊपर तो मैं तीर नहीं छोड़ सकता, लेकिन एक बार मैंने इस तीर को खींच के रखा है, इसको छोड़ना तो चाहिए, किसी न किसी चीज को तो इस तीर को नष्ट करना चाहिए। तो फिर आपके तपस्या के बल पर जो आपके स्वर्ग की प्राप्ति है, उस स्वर्ग की प्राप्ति या स्वर्ग का अधिकार मैं नष्ट करूंगा। तो परशुराम तो कुछ कह नहीं सके, उन्होंने कहा कि मैंने कश्यप मुनि को वरदान दिया था कि मैं यहां पर निवास नहीं करूंगा, रात बहुत जल्दी होने वाली है, मुझे यहां से निकल जाना है, तो कृपया ऐसा कोई कार्य कीजिए, अगर आप स्वर्ग का अधिकार मुझसे छीन लेना चाहते हैं कम से कम मुझे महेंद्र पर्वत में स्थान दीजिए जहां पर लौटकर मैं अपनी तपस्या जारी रखूं। इतना स्थान मेरे लिए दीजिए। जब मैंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था, फिर प्रायश्चित करने के लिए मैंने विशाल यज्ञ किए थे, जिसमें जो मुख्य पुरोहित थे वो कश्यप मुनि, मैंने उनको सारी पृथ्वी दान में दे दी। फिर कश्यप मुनि ने मुझसे कहा कि आप अभी यहां पर निवास नहीं करना और अस्त्र नहीं उठाना, तो कृपया मेरे लिए महेंद्र पर्वत इतना स्थान आप रखिए। तो श्रीराम ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने उनका तीर छोड़ दिया, जिससे कि परशुराम के स्वर्ग की प्राप्ति का अधिकार नष्ट हो गया। मतलब उन्होंने जितने तपस्या किए थे उसका फल खत्म हो गया। फिर से वो महेंद्र पर्वत गए तपस्या करने के लिए। इस तरह से प्रभु रामचंद्र ने विष्णु का धनुष भी तोड़ दिया। इस तरह से ऐसे कई कई अद्भुत कार्यों का प्रदर्शन श्री राम ने किए, जिससे कि उन्होंने सिद्ध किया कि वो स्वयं भगवान है। कई लोगों की धारणा ये होती है कि श्री राम श्री कृष्ण ये भगवान नहीं है। वो कहते हैं कि आप लोगों ने उनको केवल भगवान बना के रखा है, वो तो केवल मनुष्य थे, केवल थोड़े शक्तिशाली थे, इसलिए आप उनको भगवान कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान बनाए नहीं जाते हैं, भगवान तो भगवान ही होते हैं, रहते हैं और होंगे भी। ये शास्त्रों का वर्णन है। हम श्री राम को श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि शास्त्र वैसे कहते हैं, संत महात्मा वैसे कहते हैं। तो इसलिए गुरु साधु शास्त्र के प्रमाण के ऊपर हम श्रद्धा रख के श्री राम को श्री कृष्ण को और अन्य जो भी उनके अवतार हैं उनको भगवान मानकर उनकी हम पूजा आराधना सेवा करते हैं। आज श्री राम का जन्म दिवस है। इस पावन दिवस के ऊपर हमें श्री रामचंद्र के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे उन्होंने तीर खींच के रखा था, उस तीर को वो छोड़े और हमारे हृदय में जो भी गंदी चीजें हैं, अनर्थ हैं, जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद इत्यादि, उनको नष्ट करें और हमारे हृदय में उनके चरणों के प्रति शुद्ध प्रेम वो जागृत कराएं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। तो आपके कोई रामचंद्र जी को सिया राम क्यों कहते हैं? सिया राम मतलब सीता राम, सीता का हुआ सिया, सियावर, सियावर मतलब सीता देवी का वर, वर मतलब हस्बैंड पति। सियावर रामचंद्र की जय, सीतापति रामचंद्र की जय। ऐसे अयोध्या में चित्रकूट में आप जाएंगे तो वहां ये जय घोष आप हमेशा सुनेंगे।
ज्यादा पाप के इसके पश्चात हमको नरक में जाना पड़ता है। फिर उसके बाद जब हम फिर इस दुनिया में जन्म लेते हैं, तब हम ज्यादा पाप करने के पश्चात हमको इस मनुष्य जाति में न भेजते हुए दूसरे प्राणी के इसमें जन्म मिलता है। ये क्या सच है क्या?
हाँ सच है। जब बहुत पाप करते हैं हम तो हमें नरक लोक भेजा जाता है, लेकिन नरक लोक में जाके हमारे सारे पाप खत्म नहीं हो जाते, थोड़े बहुत पाप रह जाते हैं। तो उन पापों के लिए, उन पापों को भुगतने के लिए फिर से जब हम पृथ्वी लोक में जन्म लेते हैं तो नीच योनियों में पहले जन्म लेते हैं, जैसे कीड़े पक्षी पशु, और फिर धीरे 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 से प्रगति करके हम मनुष्य योनि तक पहुंचते हैं। ठीक है। क्या है कि विष्णु भगवान ने दशरथ महाराज को अपना पिता स्वीकार किया राम अवतार में। वैसे तो भगवान के कोई माता पिता नहीं है, क्योंकि भगवान ही तो सभी के माता पिता है। लेकिन जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे, भगवान ये प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं अपने भक्तों के प्रति, इसीलिए वो अपने किसी प्रेमी भक्त को अपना पिता, किसी को अपनी माता, किसी को अपना भाई, ऐसे चुनते हैं। और जब वो यहां पर भौतिक जगत में प्रकट होते हैं ये लीलाओं के करने के लिए, तो इन शुद्ध भक्तों को वो ऐसे कोई विशेष भूमिका देते हैं, जैसे पिता माता भाई बहन सेवक इत्यादि। तो दशरथ महाराज उनके प्रिय भक्त हैं, इसलिए श्री रामचंद्र ने उनको चुना पिता बनने के लिए। देव कौन है हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे हरे कृष्ण है, हरे राम है, हमारे लिए आराध्य देव कृष्ण है, लेकिन जब हम कृष्ण शब्द का उपयोग करते हैं तो कृष्ण में सभी अवतार भी आ जाते हैं। कृष्ण में राम भी आ जाते हैं, नरसिंह भी आ जाते हैं, मत्स्य, वराह, सारे अवतार आ जाते हैं, क्योंकि ये नरसिंह वामन कौन है? कृष्ण ही है। राम कौन है? कृष्ण ही है, लेकिन केवल एक अलग भाव में प्रकट हुए हैं, बस है वही व्यक्ति, अंतर नहीं है। केवल अपने भाव को अलग प्रकट करने के लिए वो अलग रूप धारण किए हैं उन्होंने। लेकिन इस समय हमें यह चिंता नहीं करनी है कि मूल रूप में हम किसके भक्त हैं, राम के हैं, कृष्ण के हैं, नहीं, हमें विष्णु तत्व की पूजा करनी चाहिए, और खास करके श्री कृष्ण के, जिनसे कि ये अन्य अवतार उत्पन्न होते हैं। यह प्रश्न ऐसा है, सब लोग मछली खाते हैं तो फिर भगवान मछली का अवतार क्यों लेते हैं? ऐसे कई लोग हैं जो मनुष्य को भी खाते हैं। अफ्रीका में आज तक आपको ऐसे समाज मिलेंगे, जंगल में मनुष्य का खून खाते हैं, पीते हैं, और राक्षस तो यही करते हैं। राक्षसों का काम तो यही होता है, जैसे कुंभकर्ण क्या करते थे, वो तो मनुष्यों को खाते थे ना, उनका खून पीते थे। और आजकल हम देखते हैं कि अमेरिका में, हांगकांग में, वो जो गर्भपात के बाद जो मरा हुआ बच्चा होता है, आजकल उसको लोग खाते हैं बड़े बड़े होटल में, और बहुत सारा कीमत, बहुत बड़ी कीमत होती है उसके लिए। तो आजकल अच्छे अच्छे होटल में टाई सूट पहनकर लोग ये भी खा रहे हैं, तो लोग मनुष्यों को भी खा रहे हैं। जो पशु के प्रवृत्ति के इंसान होते हैं वो कुछ भी खाते पीते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। भगवान अलग अलग योनियों में अवतार लेते हैं, लेकिन जिस योनि में भी वो अवतार लें, वो हमेशा भगवान ही रहते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने मछली के समाज में अवतार लिया इसलिए वो कोई कम है, या मनुष्य समाज में अवतार लिया इसलिए वो कोई ज्यादा है। श्री राम और मत्स्य अवतार के बीच में कोई अंतर नहीं है, दोनों उतने ही भगवान ही हैं। भगवान उतने ही हद तक दिव्य है मछली के रूप में जितना कि वो कूर्म रूप में, या रामचंद्र के रूप में, या कृष्ण के रूप में। हम वाली को शक्तिशाली और सबसे बड़े, तो वाली को छुप कर क्यों मारे? तो भगवान, प्रश्न ये है कि वाली को भगवान श्री राम ने छुप कर क्यों मारा? इसके लिए भी कई कारण हैं, लेकिन ये विषय बड़ा है। वैष्णव आचार्यों ने काफी कुछ टीका इसके ऊपर दी है, मध्वाचार्य ने भी बहुत कुछ इस लीला के ऊपर लिखा, यहां तक एक सारा ग्रंथ ही लिखा है इसके ऊपर। कहने की बात तो यह है कि श्री राम एक मनुष्य समाज में आए थे, मनुष्य लीला कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो भगवान है। वाली ने बहुत अत्याचार किया था, गलत काम भी किए थे, उनको अपने कर्मों का फल मिलना था, तो भगवान उनके कर्मों को, कर्मों के फल को प्रदान करने के लिए वो कारण बने। तो भगवान उनके कर्मों का फल किसी भी तरह से दे सकते हैं, चाहे इस तरह से चाहे उस तरह से, तथा कथित अधार्मिक तरह से या धार्मिक तरह से, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि वाली एक वानर रूप में था, और क्षत्रिय उस समय शिकार भी किया करते थे, तो क्षत्रिय के लिए ये कोई बुरी बात नहीं थी, या ये कोई निंदनीय बात नहीं थी, क्योंकि उनके लिए शिकार करना यह आवश्यक था। और इस समय प्रभु रामचंद्र जी अपना पूर्ण शक्ति प्रकट कराना नहीं चाहते थे, वो भी एक लीला कर रहे थे, जबकि पहली बार वाली और सुग्रीव फिर मिले युद्ध के लिए, श्री राम पेड़ के पीछे छुप के देख रहे थे, लेकिन दोनों सुग्रीव और वाली इतने बराबर दिख रहे थे कि श्री राम पहचान नहीं पाए कि सुग्रीव कौन है और वाली कौन है, इसलिए उन्होंने तीर छोड़ा ही नहीं पहली बार। फिर आखिर में सुग्रीव को इतनी पिटाई हुई कि वो भागकर वहां से चले गए जान बचाने के लिए, और वाली ने बहुत धमकाया उनको कि ठीक है इस बार जाने दो, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। और फिर सुग्रीव ने कहा क्या बात है, आपने बोला कि मैं तुम्हें बचाऊंगा और मैं गया लड़ाई करने के लिए और आपने तीर छोड़ा ही नहीं। तो राम ने कहा नहीं मैं पहचान नहीं पाया, तो अगली बार मैं पहचान पाऊंगा। तो ये भगवान की लीला है। तो इस तरह से हमें कोई संशय की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए इसको। और कोई प्रश्न?
सूर्य वंश में अवतार ले फिर रामचंद्र क्यों लगाते?
राम सूर्य वंश में प्रकट हुए तो उनको रामचंद्र क्यों कहते हैं? ठीक है आप उनको राम सूर्य भी कहिए, कोई बात नहीं। राम सूर्य, चंद्र मतलब चंद्रमा की तरह सुंदर। पूर्णिमा का चांद बहुत सुंदर होता है ना, तो कोई चीज बहुत सुंदर होती है तो उसको चांद की तुलना की जाती है, इसलिए रामचंद्र, कृष्ण चंद्र, वृंदावन चंद्र, मायापुर चंद्र, सौंदर्य को दिखाने के लिए, शुद्धता को दिखाने के लिए। पर ये तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो प्रभु रामचंद्र जी को युद्ध में कैसे ललकार सके? ये भी हम पिछले साल भी रामकथा में चर्चा कर चुके और कल सुबह को भी चर्चा कर रहे थे कि वैसे परशुराम में और श्री राम में अंतर है एक दृष्टि से, कि प्रभु राम पूर्ण भगवान है और परशुराम एक जीवात्मा है जो कि शक्त्यावेश अवतार है। परशुराम भी हम सब की तरह एक जीवात्मा है, लेकिन भगवान की विशेष शक्ति उनको प्रदान की गई है, इसलिए ऐसे अवतारों को शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। वो पूरे भगवान के स्तर में नहीं होते, जीव तत्व होते हैं, जीवात्मा हमारी तरह, लेकिन प्रभु रामचंद्र पूर्ण भगवान है, विष्णु तत्व है, पहली बात। दूसरी बात कि जीवात्मा होने के नाते विस्मृति आना यह भी स्वाभाविक है। और जब प्रभु रामचंद्र जी आए ढके हुए रूप में आए, एक मनुष्य के रूप में आए, इसलिए परशुराम भी पहचान नहीं पाया कि श्री राम ये भी स्वयं विष्णु है। जब श्री राम ने छीन लिया वो धनुष विष्णु का, तब परशुराम ने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने आपको गलत समझा था, अब मैं जानता हूं कि आप वही श्री विष्णु हैं। इस तरह परशुराम को बाद में पता चल गया कि यही मेरे आराध्य देव हैं। और कोई प्रश्न? आखिरी,
भगवान रामचंद्र जी तो भगवान थे, इसके लिए उन्होंने जो जनता के प्रति या माता पिता के प्रति जो करते हुए वो अच्छी तरह से निभाया, तो हम मनुष्य शरीर से ये कैसे कर सकते हैं?
क्यों नहीं कर सकते? हमारे जो भी जिम्मेदारियां हैं अच्छी तरह से निभा सकते हैं, यथाशक्ति यथाबुद्धि, और साथ साथ भगवान के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको भी हमें निभाना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल माता पिता पति पत्नी बच्चों के प्रति हम कर्तव्य निभाते रहें और भगवान को भूल जाएं, ऐसा नहीं। भगवान की सेवा करते करते हमारे संसार में जितने भी कर्तव्य हैं उनको साथ साथ हम संभाले जा सकते हैं, और यही तो भगवान श्री राम ने किया। वो रोज सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा करते थे और साथ साथ अपने संसार के कर्तव्यों को भी संभालते थे। उसी तरह से हमें भी हर रोज सुबह उठकर मंगल आरती के लिए